नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मार्क वाइस की डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एनालिसिस इन C++ कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका लक्ष्य केवल प्रोग्राम चलाना नहीं बल्कि सही समस्या के लिए सही संरचना और एल्गोरिदम चुनना सिखाना है। यह पुस्तक डेटा को व्यवस्थित रखने की विधियों, उन पर होने वाली क्रियाओं की लागत और बड़े इनपुट पर प्रोग्राम के व्यवहार के बीच संबंध स्पष्ट करती है। C++ के माध्यम से सूचियों, स्टैक्स, क्यूज, वृक्षों, हैश टेबल्स, ग्राफ्स, सॉर्टिंग और खोज जैसी केंद्रीय अवधारणाओं का अध्ययन कराया जाता है। पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष इसका कार्यान्वयन केंद्रित दृष्टिकोण है, लेकिन इसके साथ समय जटिलता और डिजाइन विकल्पों की चर्चा भी चलती है। वाइज अमूर्त डेटा प्रकारों को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध इंटरफेस और उनके अंदरूनी कार्यान्वयन के रूप में अलग करके देखते हैं। इससे पाठक समझता है कि एक ही व्यवहार देने वाली दो संरचनाओं की गति, स्मृति उपयोग और उपयुक्तता अलग हो सकती है। यह पुस्तक मुख्यतः दूसरे स्तर के कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रमों, C++ जानने वाले विद्यार्थियों और आधारभूत एल्गोरिथमिक सोच को व्यवस्थित करना चाहने वाले प्रोग्रामरों के लिए उपयुक्त है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बिग ओ विश्लेषण के जरिए प्रोग्राम की बढ़ती लागत को समझना। पुस्तक का आधार यह विचार है कि एल्गोरिथम का मूल्यांकन केवल छोटे उदाहरण पर उसके चलने से नहीं किया जा सकता। जब इनपुट आकार बढ़ता है, तब कितनी तुलनाएं, स्थानांतरण, मेमोरी क्रियाएं या पुनरावृत्तियां बढ़ती हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी संदर्भ में समय, जटिलता और बिग ओ संकेतन का उपयोग किया जाता है। पुस्तक पाठक को स्थिर लागतों के बजाय वृद्धि की दर देखने के लिए तैयार करती है। उदाहरण के लिए, किसी सूची में क्रमिक खोज का समय तत्वों की संख्या के साथ बढ़ता है, जबकि क्रमबद्ध डेटा पर उपयुक्त खोज विधि अलग व्यवहार दे सकती है। इस तुलना का उद्देश्य किसी एक एल्गोरिथम को हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कहना नहीं है। वास्तविक चयन इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा पहले से क्रमबद्ध है या नहीं, अद्यतन कितने होते हैं, खोज कितनी बार होती है और सबसे खराब स्थिति कितनी स्वीकार्य है। पुनरावृत्ति संबंधों और मूलभूत गणितीय तर्क की भूमिका भी इसी कारण अहम है। पाठक को यह समझना होता है कि विभाजन आधारित विधियां, नेस्टेड लूप्स और पुनरावृत्ति कॉल्स अलग वृद्धि पैटर्न क्यों बनाते हैं। पुस्तक की उपयोगिता यह है कि विश्लेषण को कोड से अलग सैद्धांतिक अभ्यास नहीं माना गया। रनिंग टाइम को डेटा संरचना के इंटरफेस और उसके कार्यान्वयन के साथ जोड़कर समझाया जाता है। इसलिए विद्यार्थी लागत का अनुमान लगाना और धीमे समाधान के मूल कारण पहचानना सीखता है। दूसरा, अमूर्त डेटा प्रकार में इंटरफेस और कार्यान्वयन का स्पष्ट विभाजन। इस पुस्तक की विशेष पहचान इंटरफेस और कार्यान्वयन को अलग रखने पर उसका जोर है। इंटरफेस बताता है कि किसी डेटा संरचना से क्या काम लिए जा सकते हैं, जैसे जोड़ना, हटाना, खोज करना, शीर्ष तत्व देखना या खाली होने की जांच करना। कार्यान्वयन बताता है कि ये काम अंदर से किन एरे, लिंक्ड नोड्स, पॉइंटर्स या अन्य तकनीकों से किए जाएंगे। यह भेद केवल कोड को व्यवस्थित रखने की शैली नहीं है, यह प्रोग्राम को उस आंतरिक प्रतिनिधित्व से स्वतंत्र बनाता है जिसे भविष्य में बदला जा सकता है। मसलन, स्टैक का उपयोग करने वाले भाग को इस बात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि स्टैक एरे से बनाए या लिंक्ड लिस्ट से। यदि अपेक्षित क्रियाएं और उनका व्यवहार वही रहे तो कार्यान्वयन बदला जा सकता है। इससे परीक्षण, रखरखाव और पुनः उपयोग सरल होते हैं। पुस्तक पहले संरचना की भूमिका और उसकी क्रियाओं की अपेक्षित लागत पर विचार कराती है, फिर उसके निर्माण की बारीकियों तक जाती है। यह क्रम अमूर्त सोच विकसित करता है, क्योंकि विद्यार्थी सीधे पॉइंटर संचालन में उलझने के बजाय समस्या की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। साथ ही यह दृष्टि ट्रेडऑफ्स को ठोस बनाती है। एरे आधारित रूप तेज प्रत्यक्ष पहुंच दे सकता है, जबकि लिंक्ड रूप आकार बदलने में सुविधाजनक हो सकता है। सही उत्तर इस पर निर्भर है कि क्लाइंट को किन क्रियाओं की जरूरत है। यही अंतर पुस्तक को केवल डेटा संरचनाओं की सूची से अधिक सॉफ्टवेयर डिजाइन की शिक्षा बनाता है। तीसरा, रेखीय संरचनाओं से वृक्ष और हैशिंग तक डेटा संगठन के विकल्प। पुस्तक डेटा संगठन को क्रमशः जटिल विकल्पों के रूप में प्रस्तुत करती है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू जैसी रेखीय संरचनाएं यह सिखाती हैं कि डेटा तक पहुंचने, शुरुआत या अंत में बदलाव करने तथा क्रम बनाए रखने की लागत अलग अलग होती है। स्टैक अंतिम जोड़े गए तत्व को पहले निकालने वाली आवश्यकता के लिए उपयुक्त है, जबकि क्यू आगमन क्रम के अनुसार सेवा देने वाली स्थितियों के लिए उपयोगी होता है। इन संरचनाओं की सीमाएं अधिक जटिल खोज और प्राथमिकता आधारित जरूरतों में सामने आती है, तब वृक्षों का महत्व बढ़ता है। बाइनरी सर्च ट्री क्रमबद्ध डेटा के साथ खोज, प्रविष्टि और विलोपन को व्यवस्थित करने का मॉडल देता है। लेकिन उसका प्रदर्शन वृक्ष की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि वृक्ष असंतुलित हो जाए तो अपेक्षित लाभ घट सकता है। हीप प्राथमिकता क्यू के लिए अलग उपयोगी व्यवस्था देता है, जहां न्यूनतम या अधिकतम तत्व तक पहुंच प्रमुख लक्ष्य होता है। हैशिंग दूसरी दिशा में समाधान देती है। यह कुंजी को टेबल स्थान में बदलकर तेज औसत खोज का लक्ष्य रखती है, लेकिन टकराव, लोड फैक्टर और टेबल आकार जैसे मुद्दे इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पुस्तक का सार यह नहीं कि हर समस्या के लिए उन्नत संरचना चुनें, बल्कि यह है कि ऑपरेशनों के अनुपात, क्रम की जरूरत, कुंजी के स्वरूप और स्वीकार्य सबसे खराब स्थिति को देखकर संरचना चुनी जाए। इस तुलनात्मक ढांचे से पाठक डेटा संरचनाओं को परिभाषाओं के बजाय इंजीनियरिंग निर्णयों के रूप में देखता है। चौथा, सॉर्टिंग और खोज में एल्गोरिथमिक रणनीति तथा व्यावहारिक ट्रेड ऑफ्स। सॉर्टिंग और खोज इस पुस्तक में इसलिए केंद्रीय हैं क्योंकि वे समान लक्ष्य तक पहुंचने वाली अलग एल्गोरिथमिक रणनीतियों की तुलना संभव बनाते हैं। क्रमबद्ध डेटा खोज को तेज कर सकता है, पर उस क्रम को बनाए रखने की कीमत भी होती है। इसलिए प्रश्न केवल इतना नहीं है कि कौन सी सॉर्टिंग विधि तेज है, प्रश्न यह भी है कि डेटा कितना बड़ा है, क्या वह लगभग क्रमबद्ध है, उपलब्ध मेमोरी कितनी है, स्थिरता आवश्यक है या नहीं, और रिकॉर्ड्स पर प्रतिलिपि बनाने की लागत क्या है। सरल वर्गाती विधियां छोटे इनपुट या शिक्षण के लिए उपयोगी हो सकती है क्योंकि उनका नियंत्रण प्रवाह सहज होता है। बड़े डेटा के लिए विभाजन, विलय या हीप आधारित विधियां बेहतर वृद्धि दर दे सकती है, लेकिन उनके अपने मेमोरी और कार्यान्वयन संबंधी प्रभाव होते हैं। इसी तरह क्रमिक खोज असंगठित संग्रह में सीधे काम करती है, जबकि बाइनरी खोज के लिए क्रमबद्धता और यादृच्छिक पहुंच जैसी शर्तें मायने रखती है। पुस्तक C++ कार्यान्वयन के जरिए यह भी दिखाती है कि एल्गोरिथमिक विचार वास्तविक कोड से कैसे प्रभावित होते हैं। इंडेक्स सीमा, कॉपी करने की लागत, टेम्पलेट आधारित सामान्यता और कंटेनर का चुनाव प्रदर्शन पर असर डाल सकते हैं। फिर भी मूल शिक्षा किसी भाषा विशेष की चाल नहीं है, वह यह है कि पूर्व शर्तों को पहचानें, अपेक्षित और सबसे खराब लागत अलग रखें तथा मापदंडों के आधार पर विधि चुनें। यह दृष्टिकोण पाठक को केवल प्रसिद्ध एल्गोरिथम याद करने के बजाय उनके चयन का तर्क देता है। अंत में, ग्राफ एल्गोरिथम और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से समस्या मॉडल बनाना। उन्नत भागों में पुस्तक ऐसी समस्याओं तक जाती है जहां डेटा को साधारण रेखा या वृक्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। ग्राफ मॉडल वस्तुओं और उनके संबंधों को शीर्षों तथा किनारों के रूप में व्यक्त करता है। मार्ग, नेटवर्क, निर्भरता, पहुंच और संपर्क जैसी स्थितियों में यह मॉडल स्वाभाविक बनता है, लेकिन ग्राफ के लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव निर्णायक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स घने ग्राफ और किनारे की त्वरित जांच में उपयोगी हो सकता है, जबकि एडजेसेंसी लिस्ट विरल ग्राफ में मेमोरी बचा सकती है और पड़ोसियों पर चलने वाली क्रियाओं के लिए बेहतर हो सकती है। ट्रैवर्सल, सबसे छोटा पथ और अन्य ग्राफ प्रक्रियाएं इसी प्रतिनिधित्व तथा प्राथमिकता क्यू जैसी सहायक संरचनाओं पर निर्भर करती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अलग प्रकार का विचार प्रस्तुत करती है। जब समस्या के छोटे उपसमस्याओं के उत्तर दोहराए जाते हैं और इष्टतम समाधान उनसे बनाया जा सकता है, तब परिणामों को सुरक्षित रखकर अनावश्यक पुनर्गणना घटाई जाती है। इसमें मुख्य कठिनाई कोड लिखना नहीं, सही अवस्था, पुनरावृत्ति संबंध और आधार स्थितियां तय करना है। पुस्तक के व्यापक उद्देश्य में ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पाठक को तैयार संरचना चुनने से आगे ले जाते हैं। उसे समस्या का मॉडल बनाना, उपसमस्या पहचानना, लागत का विश्लेषण करना और उपयुक्त प्रतिनिधित्व तैयार करना पड़ता है। इस प्रकार ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथमिक डिजाइन को वास्तविक समस्या समाधान की दिशा देते हैं। निष्कर्ष में, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन C++ उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्होंने C++ की बुनियादी प्रोग्रामिंग, पॉइंटर्स, रिकर्शन और कुछ असतत गणित पढ़ लिया है और अब बड़े प्रोग्रामों की संरचना तथा दक्षता समझना चाहते हैं। यह स्वयं अध्ययन करने वाले प्रोग्रामरों के लिए भी उपयोगी संदर्भ हो सकती है, बशर्ते वे कोड को केवल कॉपी करने के बजाय उसके रनिंग टाइम और डिजाइन निर्णयों की जांच करें। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी कार्य के लिए एरे, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, हीप, हैश टेबल या ग्राफ प्रतिनिधित्व चुनने का कारण स्पष्ट कर सकता है। बौद्धिक लाभ यह है कि वह इंटरफेस, कार्यान्वयन, पूर्व शर्त, औसत स्थिति और सबसे खराब स्थिति के बीच अंतर करना सीखता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों में या तो गणितीय विश्लेषण प्रमुख होता है या फिर भाषा आधारित प्रोग्रामिंग। उदाहरण, वाइस की पुस्तक इन दोनों के बीच कार्यान्वयन केंद्रित संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इसका इंटरफेस और कार्यान्वयन का अलगाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्योंकि इससे डेटा संरचना को उपयोग के अनुबंध और अंदरूनी तकनीक दोनों रूपों में समझा जा सकता है। हालांकि कुछ शुरुआती पाठकों को C++ कोड अपेक्षाकृत परिष्कृत लग सकता है और कठिन अभ्यासों के लिए अतिरिक्त गणितीय अभ्यास लाभदायक रहेगा। फिर भी स्पष्ट संगठन, उदाहरणों और संरचना चयन पर निरंतर ध्यान के कारण यह डेटा संरचना पाठ्यक्रम के लिए मजबूत दीर्घकालिक आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्कवाइज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।